نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد جس ملک سے بھی سفر کے لیے روانگی ہوتی ہے تو اس کی ترتیب تقریباً برابر ہوتی ہے کچھ حضرات تو وہ ہوتے ہیں جو گھر ہی سے الوداع کر دیتے ہیں جیسے جب سفر شروع ہوا تو بہت سے دوست احباب ایسے تھے جنہوں نے لیسٹر ہی سے الوداع کر دیا ایک جماعت اور پھر دوسری جماعت ان حضرات کی ہے جو ایئرپورٹ تک آئے گاڑی اچھی سے اچھی ان کو پسند کی اور عمدہ اور اچھی اعتماد والی گاڑی میں ایئرپورٹ تک پورے آرام کے ساتھ پہنچایا اور گاڑی سے اتار کر چیک ان کی ساری ضرورتیں انہوں نے پوری کی اور امیگریشن کی ابتدا کی جو حد ہے وہاں تک انہوں نے ساتھ دیا یہ دوسری جماعت ہے اور اس دوسری جماعت کے بعد ایک تیسری جماعت ہے جو امیگریشن میں بھی ساتھ داخل ہوتی ہے جنہیں رفیق سفر کہتے ہیں اور آگے امیگریشن کے مسائل کسٹسائل سیٹ کے مسائل سفر کے مسائل اخیر تک وہ ساتھ دیتے ہیں یہ ترتیب تقریباً ہر سفر میں ہوتی ہے اور جب سفر ہو رہا ہے اور اختتام کو پہنچتا ہے تو اس وقت بھی انسان دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت سے دوچار ہوتا ہے اگر اس کے استقبال کے لیے حسب وعدہ اس کے دوست احباب پہنچے ہوئے نہ ہوں تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے غم لاحق ہوتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے اور اگر اپنے ملک میں آتا ہے تو پھر بھی کسی قدر اسے تسلی رہتی ہے ورنہ پرائے ملک میں ہوتا ہے تو بہت ہی فکر مند ہو جاتا ہے اور استقبال کے لیے دوست احباب ہوں ساتھی ہوں پہچاننے والے ہوں تو اسے بے حد خوشی ہوتی ہے استقبال کرنے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے آنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے اور استقبال کرنے والے منزل مقصود تک اس آنے والے مہمان کی ساری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر کے اسے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں یہ ہے سفر کی ترتیب جو تقریباً ہر شخص کو پیش آتی ہے اس سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے سفر جو ہیں یہ آخرت کے بڑے سفر کے نمونے ہیں اور آخرت کا بڑا سفر جو ہے وہ بھی تقریباً اسی ترتیب سے چلے گا اکثر لوگ تو وہ ہوں گے جو اپنے اپنے مقام ہی سے الوداع کر دیں گے ایک شخص ہے اس کے جاننے پہچاننے والے 1000-2000 آدمی ہیں تو جنازے پہ کتنے آئیں گے 200 آئیں گے 300 آئیں گے 400 آئیں گے میجورٹی جنازے میں شرکت نہیں کرتی 50% تو عورتوں کا حصہ ہے رشتے دار عورتیں ہیں جاننے والی عورتیں ہیں وہ گھر ہی سے الوداع کر دیتی ہیں ساتھ نہیں جاتے اور دوسرے بہت سے دوست احباب ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے یا یہ کہ شہر سے باہر کسی دوسرے شہر میں ہیں کسی دوسرے ملک میں ہیں تو ساتھ نہیں جا سکتے اور قلیل تعداد सवारी का भी इंतजाम करती है, जनाजे का भी इंतजाम करती है, कफन का भी इंतजाम करती है, कब्र तक इमिग्रेशन तक पहुंचाने के जितने वसाइल हैं और जितनी जरूरतें हैं उन सब का वो पूरा इंतजाम करती है, ये दूसरी जमात। और जनाजे की नमाज पढ़ के कब्र में उतार कर कब्र को बंद करके फारिग हो जाते हैं। अब जैसे एयरपोर्ट पे ये दूसरी जमात ये चाहती है कि हमारे वालिद बीमार हैं, हमारे वालिद बूढ़े हैं, हमारी वालिदा बीमार हैं, हमारे दोस्त बीमार हैं, हम चाहते हैं कि इनके साथ चले और वहां तक इनको पहुंचाएं, लेकिन नहीं जा सकते, हदबंदी है। तो यहां भी यही हाल है कि जी चाहने के बावजूद भी आगे नहीं जा सकेंगे। भाई कोई जाता है कब्र में? कोई नहीं जाता। अव्वल तो ये कि किसी का जी ही नहीं चाहता, और अगर किसी का जी भी चाहे तो जा नहीं सकते, वहीं से अलविदा। अब यहां से आगे रफीक सफर काम आएगा। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। अगर अच्छा अमल है तो वो अच्छा रफीक सफर बनेगा, कब्र में भी मुनिस, कियामत के दिन भी मुनिस, हश्र में भी मुनिस, पुल सिरात पर भी मुनिस, और हमेशा के लिए जन्नत में। और अगर रफीक सफर अच्छा नहीं है तो न सिर्फ ये कि वो तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा, वो अपना बोझ भी तुम पे ला देगा, परेशान करेगा, पूरे सफर में परेशानी ही परेशानी रहेगी। अगर बुरा अमल है तो कब्र से लेकर अखीर तक परेशानी ही परेशानी रहेगी। और जिस तरह मंजिल मकसूद तक आदमी जब पहुंच जाता है पर अपनों को नहीं देखता और उसे परेशानी होती है, तो इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इंसान की रूह खींच ली जाती है और उसे आखिरत में पहुंचाई जाती है तो वो अगर जहन्नमियों में से है तो उसका इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि जहन्नमी तो खुद अपनी हालत में परेशान होंगे, वो जहन्नम में किसका इस्तकबाल करेंगे, ये परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। और अगर उसकी रूह जन्नत वालों में सी है तो जब ये रूह आला इल्लियीन में पहुंचाई जाती है तो हमसे पहले जितने लोग जन्नत में जा चुके हैं वो सब मिलने के लिए आते हैं। इसीलिए हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हो रहा है और उनकी अहलिया रोने लगी और कहने लगी कि आप तो हमें छोड़ के जा रहे हैं, आप आखिरत में चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तो आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया कि ये तो खुशी का मकाम है, गदन नलकल अहिब्बत मुहम्मदन व हिज़बहु, ये तो खुशी का मकाम है कि आइंदा कल जब हमारी रूह परवाज करेगी तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से मुलाकात करेंगे। वो इस्तकबाल करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिस वक्त इंतकाल हो रहा है तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, जिनमें सिद्दीक अकबर और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का खास जिक्र है, इंतजार फरमा रहे हैं, किसी के इंतजार में खड़े हैं। तो पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसके इंतजार में खड़े हैं, आप परेशान मालूम हो रहे हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी दुनिया से आखिरत की तरफ सफर कर रहा है, मैं उसके इस्तकबाल के लिए आया हूं। तो दुनिया से जब हम जाएंगे, यहां से जब रूह परवाज होगी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जा, दाखिल हो जा। इसीलिए जो दुआ सिखलाई गई है वो क्या है? फातिह समावाति वल अर्द, ए आसमान और जमीनों को पैदा करने वाले, अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिर में तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा कारसाज है। तवफनी मुसलिमन, तू मुझे मुसलमान होने की हालत में उठाना, वह अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे अच्छों के साथ मिला देना, नेकों के साथ मिला देना। तो बस भाई ये असफार जो हैं ये हमें मौत की याद दिलाते हैं, हमें भी इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनमें से अक्सर तो अपने अपने मकाम ही से अलविदा कर देंगे, और उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फोन करके खैर खैरियत भी कहकर दुआओं के लिए भी कहते हैं और खुदा हाफिज भी कह देते हैं। तो कुछ ऐसे होंगे जो इसाले सवाब भी कुछ न कुछ कर देंगे, लेकिन अक्सर तो ऐसे होते हैं कि फोन भी नहीं करते, याद भी नहीं करते दूर वाले। तो ईसाले सवाब भी कोई नहीं करेगा। ये भी नहीं कह सकेंगे कि अल्लाह ताला उसके हाल पे रहम फरमाएगा और एक कलील तादाद हमें कब्र तक छोड़ने के लिए आएगी, लेकिन आगे नहीं जा सकेंगे। यतबहुल मय्यित सलासतुन फयरजू मिन्हु इस्नान वयबका माहु वाहिद। तीन चीजें जाती हैं, दो चीजें वापस आ जाएंगी, एक उसके साथ रहेगी। फयरजू मिन्हु अमलुहु फयरजू मिन्हु अहलुहु वमालुहु, उसका अहल और उसका माल तो वापस आ जाएगा। वयबका माहु अमलुहु, उसके साथ रफीक सफर कौन है, उसका अमल है। और अगर खैरन यरा है, खैर है, वो उसे पाएगा, देखेगा, खैर है तो रफीक सफर अच्छा होगा, और अगर शर है तो रफीक सफर बुरा होगा। और अगर ये रफीक सफर बुरा ही लेकर गया और दुनिया में बुरे आमाल ही करता रहा तो फिर वहां उसके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं होगा। नदामत होगी, पशीमानी होगी, परेशानी होगी, गम होगा, हुमूम व गुमूम के पहाड़ टूट पड़ेंगे। और अगर अच्छे रफीक के साथ गया है और यहां से अच्छे आमाल करके गया है तो फिर अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु के फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह ने अगर बहुत ही ऊंचा मर्तबा अता फरमाया तो अंबिया इस्तकबाल करेंगे, सहाबा इस्तकबाल करेंगे, और उस वक्त उसे ऐसी खुशी होगी, ऐसी खुशी होगी कि न पहले उसे कभी हुई होगी न बाद में उसको कभी होगी। इसलिए इन असफार से हमें सबक हासिल करके हमेशा का जो सफर है आखिरत का सफर, उसके लिए हर वक्त तैयारी करते रहना चाहिए। और खास तौर पे ये जो मुबारक अय्याम है, शाबान का महीना बिल्कुल करीबुल खत्म है, एक दो दिन बाकी रह गए हैं, और अगर 29 ही हुए शाबान के तो रमजान मुबारक शनिचर से शुरू हो जाएगी, यानी जुमा की शाम को तरावी होगी। तो इस वजह से अभी से खूब तैयारी कर लें और पक्का अहद कर लें कि हमें अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु से अपना ताल्लुक जोड़ना है और अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु से मोहब्बत पैदा करनी है और अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु की निस्बत हमें अपने दिल में पैदा करनी है और अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु के नेक और मुखलिस और मुत्तकी और सिद्दीक बंदों में हमें शामिल हो जाना है। हमें कोशिश करना है, करने वाली जात खुदा की है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। हमें सिर्फ कोशिश करनी है, अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है, कोशिश करनी है। जो ये 30 दिन मेहनत कर लेंगे अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु उन्हें बहुत ही रफ़त अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सब दोस्तों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, जो गैर हाजिर हैं उनको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु मेरी माँ बहनों को भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु पूरी उम्मत के मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए और अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु हमें नजात पाने वालों में शामिल फरमा लें और हमें उन लोगों में से बचा लें जो रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम होते हैं और अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम के दामन में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। और जो हजरात हरमैन शरीफैन का कस्द कर रहे हैं या वहां पहुंच गए हैं, अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु उनकी हाजिरी को, उनकी उम्रों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनको वहां के आदाब की रियायत की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए और वहां के अनवार व बरकात से मुस्तफीद फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको, हमारे मुतालिकीन को, हमारे दोस्त अहबाब को वहां की हाजिरी बार बार नसीब फरमाए। और जब हमारा आखिरी सांस निकल रहा हो अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा वालो हम सबको वहां पहुंचा दे और नफ्स और शैतान के मकाइद से बचाकर रमजान मुबारक को ज्यादा से ज्यादा वसूल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। इस सिलसिले में इंग्लिश में जो लीफलेट है, सजेस्टेड टाइम टेबल फॉर द मंथ ऑफ रमजान, वो सबको ले लेना चाहिए और उसके मुताबिक अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए और अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरना चाहिए और उसके अलावा मस्जिद के प्रोग्रामों का ऐलान हो ही चुका है, हर मस्जिद में प्रोग्राम होते हैं, जिसका जहां दिल चाहे वहां चला जाए। हमारी मस्जिद नूर में मुस्तकिल तकरीबन 4 नमाज के बाद तो प्रोग्राम होते हैं, फजर के बाद भी, जोहर के बाद भी, असर के बाद भी और ईशा के बाद भी। इंग्लिश में भी होंगे, उर्दू में भी होंगे और क्रिसमस की छुट्टियों से फायदा उठाते हुए इंग्लिश का प्रोग्राम रोजाना रखा है, तो उर्दू में भी इंशाल्लाह रोजाना दर्स होगा और उसके बाद 9:30 बजे रोजाना इंशाल्लाह इंग्लिश में भी दर्स होगा। और आप हजरात की दुआओं की बरकत से सेहत भी अच्छी है, आप हजरात दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला जाहिरी बातिनी दोनों सेहतें अता फरमाए और जिस्मानी रूहानी दोनों ताकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला सबसे पहले मेरी इस्लाह फरमाए फिर आप सब हजरात की भी इस्लाह फरमाए। तो इसके लिए अभी से तैयारी करें, निजामुल औकात, कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र तस्बीह, कजाए उमरी, ये सब फिक्र अभी से करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله الا رضاك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إله العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. إله العالمين ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. صراط مستقيم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. إله العالمين خلوص عطا فرما. إله العالمين اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. إله العالمين ریاضی حفاظت فرما. إله العالمين امت کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. إله العالمين اختلاف اور رنجشوں سے حفاظت فرما. إله العالمين ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے. ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے. ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے. ہمیں اپنی محبت عطا فرما. إله العالمين ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما. إله العالمين ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے. ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے. إله العالمين ہمیں مخلص بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمیں مخلص بندوں میں شامل فرما لے. إله العالمين ہمیں اپنا بنا لیجئے. إله العالمين ہمیں اپنا بنا لیجئے. إله العالمين ہمیں اپنا بنا لیجئے. إله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. إله العالمين ہمیں ہر قسم کے گناہوں کو ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے. إله العالمين مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. يا ارحم الراحمين مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. إله العالمين وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا جب لوگ ہمیں غسل دے رہے ہوں گے. إله العالمين اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کا غسل دے دے. يا ارحم الراحمين وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا جب لوگ ہمیں کفنا رہے ہوں گے. إله العالمين اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں لباس تقوی پہنا دیجئے. إله العالمين إله العالمين قبر میں جانے سے پہلے قبر کو ہمارے اعمال سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما. إله العالمين آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جہنم سے ہماری حفاظت فرما. إله العالمين جہنم سے ہماری حفاظت. إله العالمين تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. إله العالمين تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما. إله العالمين تو ہم سے راضی ہو جا. إله العالمين تو ہم سے راضی ہو جا. إله العالمين تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما. إله العالمين تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیں بچا لے. إله العالمين تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیں بچا لے. إله العالمين تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیں بچا لے. إله العالمين پوری امت کے حال پہ رحم فرما. إله العالمين قدم قدم پہ برکتیں رحمتیں نصرتیں نازل فرما. إله العالمين مسلمانوں کی حفاظت فرما. إله العالمين مسلمانوں کو متحد بنا دے. إله العالمين سب کو حق پہ جمنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ باطل کی نفرت پیدا فرما دے. یا اللہ باطل سے بچنے کی باطل سے بھاگنے کی توفیق عطا فرما. إله العالمين إله العالمين سربراہن ممالک اسلامیہ کو نیک توفیق عطا فرما. إله العالمين سربراہن ممالک اسلامیہ کو نیک توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اسلام کی عظمت عطا فرما. إله العالمين إله العالمين ہم سب کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. إله العالمين ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. إله العالمين جو مصیبتوں میں مبتلا ہے उनको मुसीबतों से निजात अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहा आलमीन, इलाहा आलमीन इन उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। इलाहा आलमीन हम में जो परेशान हाल है, हम में जो बीमार है, हम में जो मुसीबत ज़दा है, हम में जो हाजत मन है, इलाहा आलमीन तू ही जानता है। या अल्लाह हमारे दिलों की मुरादें तू ही जानता है। या अल्लाह हमारी परेशानियों को तू ही जानता है। इलाहा आलमीन हमारी दुनिया और आखिरत की जायज हजतों को तू ही जानता है। इलाहा आलमीन हम में से बहुत से ऐसे होंगे जो तेरे सिवा किसी के सामने फरियाद नहीं कर सकते। इलाहा आलमीन तू सब कुछ जानता है। इलाहा आलमीन तू उनकी दस्तगीरी फरमा। इलाहा आलमीन तू उनकी दस्तगीरी फरमा। इलाहा आलमीन तू उनकी दस्तगीरी फरमा। इलाहा आलमीन मदद नुसरत के दरवाजे उनके लिए खोल दे। इलाहा आलमीन मजलूमीन की मदद फरमा। या अल्लाह मजलूमीन की मदद फरमा। या अल्लाह जालिमों को नेक तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन ये शाबान के बकिया अय्याम जो रह गए हैं, या अल्लाह उनमें खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी बरकतों को लूटने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन रजब का महीना गफलत से गुजर गया। या अल्लाह शाबान का महीना भी तकरीबन गुजर गया। इलाहा आलमीन ये तो दो महीने हैं, हमारी तो जिंदगियां गफलतों में गुजर गई है। इलाहा आलमीन अगर तूने हमारे ऊपर रहमत का, हमारे साथ रहमत का मामला नहीं फरमाया। इलाहा आलमीन हम किसी मकाम के नहीं रहेंगे। इलाहा आलमीन हमारे हाल पर रहम फरमा। इलाहा आलमीन हमारे बिगड़ी हुई को बना दे। इलाहा आलमीन अगर तू हमें सिरात मुस्तकीम पे डाल देगा, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन या अल्लाह हमारा सब कुछ बन जाएगा। इलाहा आलमीन तू हमारी बिगड़ी हुई को बना दे। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे डाल दे। इलाहा आलमीन शरीयत पे चलने वाला बना दे। इलाहा आलमीन दीन की सही समझ अता फरमा दे। इलाहा आलमीन कुरान और हदीस को समझने वाला बना दे। या अल्लाह समझ के उस पे अमल करने वाला बना दे। इलाहा आलमीन तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन भलाइयों की दुआ मांगी है वो सारी भलाइयां अता फरमा। जिन बुराइयों की से बना मांगी है उन सारी बुराइयों से बना अता फरमा। इलाहा आलमीन हमारी हरमैन शरीफेन की जितनी दुआएं हुई हैं, या अल्लाह उनमें जो कोताही हुई है उन्हें माफ फरमा दे। और या अल्लाह जो तेरी नजर में मकबूल है, और या अल्लाह तेरी नजर में दुआएं अच्छी थी, इलाहा आलमीन मेरे हक में, मेरे मुतालिकीन के हक में, मेरे माँ बाप के हक में, मेरे दोस्त अहबाब के हक में, मेरे भाई बहनों के हक में, मेरे रिश्तेदारों के हक में, जमीय हाजरीन के हक में और पूरी उम्मत के हक में उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। इलाहा आलमीन जिन जिन भाइयों ने बहनों ने हमें दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, जो हमसे उम्मीद रखते हैं, जिनका हम पर हक बनता है, जो हमसे ताल्लुक मोहब्बत रखते हैं, खुसूसन हमारे माँ बाप, असातिज़ा, मशाइक, दोस्त अहबाब, हाज़रीन मजलिस, शुरका मजलिस, सभी के तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।